नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एनसीएलटी ने सोमवार को विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी की याचिका पर स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया। याचिका में विमानन सेवा देने वाली कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया गया। एनसीएलटी के अध्यक्ष राम लिंगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने एयर कैसल लिमिटेड की याचिका पर स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया और इस पर अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि एयर कैसल के मुद्दे पर सामान्य स्थिति में नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा, स्पाइसजेट के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई। न्यायाधिकरण ने इस बात पर गौर किया कि दोनों पक्ष मामले के निपटान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये मामला ऐसे समय में सामने आया जब संकट से गुजर रही गो फर्स्ट ने स्वैच्छिक रूप से ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया के तहत आवेदन किया है। एयर कैसल ने 28 अप्रैल को स्पाइसजेट के खिलाफ याचिका दायर की थी। पिछले हफ्ते स्पाइसजेट ने कहा था कि एयरलाइन के बेड़े में एयर कैसल का कोई विमान नहीं है और याचिका दायर करने से उसका परिचालन प्रभावित नहीं होगा। विमानन नियामक डीजीसीए ने गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही एयरलाइन गो फर्स्ट को अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग फौरन रोकने का सोमवार को निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय के एयरलाइन को सुरक्षित, दक्ष एवं विश्वसनीय ढंग से परिचालन कर पाने में नाकाम रहने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। गो फर्स्ट ने पहले से ही 15 मई तक टिकटों की बिक्री रोक दी है। इसके साथ ही 12 मई तक एयरलाइन ने अपनी उड़ानें निरस्त की हुई है। पिछले सप्ताह एयरलाइन ने इंजन आपूर्ति समय पर न होने से पैदा हुई वित्तीय संकट का हवाला देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान अर्जी भी लगा दी। इस याचिका पर सुनवाई हो चुकी है और फैसला भी सुरक्षित रखा गया। सूत्रों के मुताबिक गो फर्स्ट में संकट गहराने के बाद डीजीसीए ने उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली टिकट बुकिंग अगले आदेश तक फौरन रोकने को कहा है। इसके अलावा 15 दिन के भीतर विमान परिचालन नहीं कर पाने पर जवाब देने को भी कहा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का बीते वित्त वर्ष की मार्च में समाप्त चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 47% बढ़कर 1,447 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने बताया कि फंसे हुए कर्ज में कमी और ब्याज आय बढ़ने से उसका परिणाम बेहतर रहा। एक साल पहले इसी अवधि में बैंक ने 984 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय सालाना आधार पर 11,405 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,238 करोड़ रुपए हो गई। इस दौरान ब्याज आय बढ़कर 12,244 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 9,832 करोड़ रुपए थी। बैंक के बोर्ड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 8.60 रुपए का लाभांश घोषित किया। इंडियन बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां 31 मार्च 2023 के अंत में घटकर 5.95% रह गई, जो एक साल पहले 8.47% थी। भारत का कोयला आयात वित्त वर्ष 2022-23 में 30% बढ़कर 16.24 करोड़ टन हो गया। ये आंकड़ा इससे पिछले वित्त वर्ष में 12.5 करोड़ टन था। एम जंक्शन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि कोकिंग कोल का आयात 2022-23 में 5.44% बढ़कर 5.44 करोड़ टन हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा 5.16 करोड़ टन था। मार्च 2023 में गैर कोकिंग कोयले का आयात 1.38 करोड़ टन रहा, जो पिछले साल इसी महीने में 1.26 करोड़ टन था। मार्च 2023 में कोकिंग कोल का आयात 39.6 लाख टन रहा, जो मार्च 2022 में 47.6 लाख टन था। भारत दुनिया के शीर्ष 5 कोयला उत्पादक देशों में शामिल है। हालांकि उसे कोयले की आवश्यकता के कुछ हिस्से को आयात के जरिए पूरा करना पड़ता है। देश कोकिंग कोल के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इस्पात बनाने में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने सोमवार को बताया कि बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ लगभग दोगुना होकर 3,174.74 करोड़ रुपए रहा। बैंक ने बताया कि मुख्य रूप से उच्च ब्याज आय के कारण उसका मुनाफा बढ़ा। बैंक ने 2021-22 की जनवरी मार्च तिमाही में 1,666.22 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। कैनरा बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में उसका कर पश्चात एकल शुद्ध लाभ 90.63% बढ़कर 3,174.74 करोड़ रुपए हो गया, जिससे पिछले वित्त वर्ष में 1,666.22 करोड़ रुपए रहा था। मार्च 2023 तिमाही में शुद्ध ब्याज आय 23.01% बढ़ी। बैंक ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में एकीकृत आधार पर उसकी शुद्ध आय बढ़कर 3,232.84 करोड़ रुपए हो गई। यह आंकड़ा जनवरी मार्च 2022 में 1,969.04 करोड़ रुपए था। भारत और कनाडा के व्यापार मंत्री दोनों देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर जारी बातचीत की प्रगति की समीक्षा करेंगे। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि इस दौरान दोनों नेता आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा करेंगे। बयान के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के उनकी समकक्ष मैरी एनजी सोमवार को ओटावा में छठी भारत कनाडा मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए चर्चा की सह अध्यक्षता करेंगी। MDTI एक द्विपक्षीय तंत्र है जो व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों और सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा के लिए संस्थागत व्यवस्था मुहैया कराता है। बयान के मुताबिक चर्चा द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने, हरित रूपांतरण सहित विभिन्न विषयों पर केंद्रित होगी। इस दौरान दोनों नेता भारत कनाडा CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा भी करेंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।